चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय तीन शीर्षक अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर होना। तो अभी पिछली बारी प्रयास संख्या 160 तक किया था तो अभी इसके आगे 161 से शुरू करेंगे और ये प्रयास जो बोर्ड पर लिखा है वह 181 है 181। तो अभी तक 160 से पहले प्रसंग इस प्रकार से है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वृंदावन की ओर जा रहे थे और नित्यानंद प्रभु ने उनका मार्ग भटका के उन्हें शांतिपुर भेज दिया अद्वैताचार्य के घर पे। और वहां पे अद्वैताचार्य ने बहुत अनेकों प्रकार के भोग सामग्री प्रसादम जो है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को और साथ में हरिदास ठाकुर और मुकुंद चार भक्त थे कुल मतलब तो इनको प्रसाद आमंत्रित किया और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जो है मतलब अनेकों प्रकार के व्यंजन जो है जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिलाए उन्होंने। तो अब तक के पूरे और उसके बाद में जब प्रसाद हो गया तो फिर बहुत विशेष संकीर्तन हुआ जहां पे महाप्रभु नृत्य करते थे और अब तक वर्णन किया गया कि महाप्रभु में किस किस प्रकार के भाव आवेश उत्पन्न हुए उस कीर्तन के दौरान। और इस प्रकार अद्वैताचार्य कई दिनों तक महाप्रभु शांतिपुर में रहे और रोज इस प्रकार से हुआ करता था कि दोपहर में महाप्रभु प्रसाद लेते थे और शाम को अद्वैताचार्य संकीर्तन करते थे और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब वहां पे उपस्थित रहते थे और तब शांतिपुर में मायापुर और उधर के भक्त भी सब वहां पे आ गए इस प्रकार से। और इसके बाद जब शची माता को पता लगा, जब सारे भक्तों को पता लगा कि महाप्रभु शांतिपुर में है तो नवद्वीप और इत्यादि आसपास के सभी भक्त शांतिपुर में आ गए और महाप्रभु के साथ जो है संकीर्तन में भाग लिया करते थे और शची माता ही वहां पे आई और जिस दिन सची माता आई उस दिन सची माता ही महाप्रभु ले जो है भोजन पकाया करती थी। तो अब आने वाले जो 20-21 ये प्यार हैं इनके जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो सची माता हैं। इससे पहले जो चर्चा हुई है उसमें मुख्य कैरेक्टर अद्वैत आचार्य प्रभु थे और नित्यानंद प्रभु मुख्यतः और ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु तो है कि वो सेंटर थीम है। लेकिन अभी जो अगले 20-21 प्यार के अंदर है मुख्य थीम मुख्य कैरेक्टर जो है वह सची माता जिनके बारे में वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए इस विशेषकर वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए इस चैतन्य चरितामृत के इस प्यार से चर्चा करेंगे 161। बीच में कुछ प्यार के अंदर तात्पर्य भी हैं लेकिन ये पूरा इट्स अ वेरी नाइस सेक्शन ये सची माता के विषय में बहुत अच्छा प्रसंग है तो इसलिए हम सोचा कि पूरा इस पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 161 प्यार इस प्रकार से है दिने आचार्य र प्रीति प्रभु र दर्शन रात्रे लोक देखे प्रभु नर्तर कीर्तन सॉरी 160 इस प्रकार से है जिस दिन से सची माता अद्वैत आचार्य के घर आई वे ही भोजन पकाती थी और श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ भोजन करते थे। दिन में जितने सारे लोग आते थे वे श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे और अद्वैत आचार्य के प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखते थे। रात्रि में उन्हें महाप्रभु का नृत्य देखने और उनका कीर्तन सुनने का अवसर प्राप्त होता था। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं अद्वैताचार्य के घर के अंदर और कीर्तन करीते प्रभु सर्व भावोदय स्तंभ कंप पुलकाश्रु गदगद प्रलय। कीर्तन करते समय महाप्रभु में सभी प्रकार के दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते थे। वे स्तंभित एवं कंपित लगने लगते थे, उन्हें रोमांच हो आया करता था और उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती थी, आंसुओं से प्रलय उपस्थित हो जाता था। तो तात्पर्य इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में प्रलय को सुख और दुख का ऐसा मेल बताया गया है जो उनकी अनुपस्थिति के द्वारा प्रकट होता है। ऐसी दशा में भक्त जमीन पर गिर पड़ता है और शरीर में अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण ऊपर वर्णित हैं। अब जब शरीर में इनकी प्रधानता हो आती है तो प्रलय अवस्था प्रकट होती है। तो जब इस प्रकार से महाप्रभु के अंदर सब भाव उत्पन्न हुआ करते थे, शची माता देखा करती थी इस प्रकार से, तो उनके साथ क्या कैसे उनके भाव आया करते थे। शणे शणे पड़े प्रभु आछड़ खाइया, देखी शची माता कहे रोदन करिया। महाप्रभु रह रहकर पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ते थे, यह देखकर उनकी माता शची रोने लगती। श्रीमती शची माता ने सोचा कि इस तरह भूमि पर गिरने से निमाई का शरीर चूर चूर हो रहा होगा, अतएव वे चिल्लाई हाय और फिर भगवान विष्णु से वर मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी सेवा की है उसके बदले में कृपा करके मुझे यह वर दें। तो इन दो पयार के अंदर प्रभुपाद आगे तात्पर्य देंगे बहुत महत्वपूर्ण शची माता के बारे में। जब जब निमाई धरती के ऊपर गिरे तब तक उसे पीड़ा का अनुभव न हो। तो शची माता भगवान विष्णु से यह वरदान मांग रही हैं कि बचपन से लेकर अब तक मैंने आपकी जो भी सेवा करी है उसके बदले मुझे ये वरदान दो कि जब जब भी निमाई जो है धरती के ऊपर गिरे तब तक उसे पीड़ा का अनुभव न हो। तो ये शची माता जो है वरदान मांग रही भगवान विष्णु से। ऐ माता शची देवी वात्सल्य विफल हर्ष भय दैन्य भावे हईल विकल। इस तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु के वात्सल्य प्रेम से शची माता अभिभूत हो गई तब वे हर्ष भय तथा दीनता से विफल साथ ही शारीरिक लक्षणों से युक्त हो गई। जब शची माता के अंदर इस प्रकार से वात्सल्य भाव उत्पन्न होता था तो हर्ष भय तथा दीनता उनके अंदर प्रकट हो जाया करती थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार से बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की ये श्लोक बतलाते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती के परिवार में जन्मी शची माता अपने विवाह के पहले ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। शची माता कह रही है कि मैंने बचपन से आपकी जो भी पूजा करी है उसके बदले में। और प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ कोट करते हैं भगवद्गीता 6:41 में से, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते। पुण्य आत्माओं के लोकों का अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद भ्रष्ट योगी या तो पुण्यात्माओं के परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेता है। शची माता नित्य सिद्ध जीव होने के कारण माता यशोदा की अवतार है। तो ये एक और प्रभुपाद खुलासा कर रहे हैं कि शची माता वास्तविकता में मदर यशोदा यशोदा माता है। वे नीलांबर चक्रवर्ती के घर में जन्मी और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगी रही। बाद में उन्हें भगवान विष्णु रूप चैतन्य महाप्रभु अपने पुत्र रूप में प्राप्त हुए और वे उनके जन्मदिन से ही उनकी सेवा करती रही। यह नित्य सिद्ध पार्षदों की स्थिति है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है उनकी क्या स्थिति है। उनकी स्थिति इस प्रकार से है कि वे सदा सदा यहां तक कि अपने बाल्यकाल से भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने गाया है, गौरांगे रो संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। हर भक्त को यह जान लेना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संगी, उनके परिजन, उनके पार्षद, मित्र तथा अन्य सभी संगी, सभी के सभी नित्य सिद्ध थे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो महाप्रभु के पार्षद थे वो नित्य सिद्ध नहीं है, ये नित्य सिद्ध है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नित्य सिद्ध भगवान की सेवा को कभी नहीं भूलता। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि नित्य सिद्ध जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा को कभी नहीं भूलते और वह सदा सदा से यहां तक कि अपने बाल्यकाल से भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। नित्य सिद्ध भक्त हैं वे अपने बाल्यकाल से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, भक्ति धाम ठाकुर के जीवन में और अनेकों अनेक और भी भक्तों के जीवन में किस प्रकार महाराज परीक्षित और अनेकों अनेक भक्त हैं जो बचपन से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और कभी भगवान की सेवा को भूलते नहीं। और यही उल्लेख करें शची देवी के बारे में कि जब वे नीलांबर चक्रवर्ती के घर में थी तब भी और अपने पूरे जीवन पर्यंत, पहले वे भगवान विष्णु की सेवा करती थी और बाद में भगवान विष्णु जो है स्वयं
चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके घर में प्रकट हुए और सच्ची माता उनकी सेवा करती थी। और यही भागवतम में बताया गया है, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते, कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, जो वाणी से अपने कर्मों से और अपने मन से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, निखिलासु अपि अवस्थासु बाह्य रूप से वो किसी अवस्था के अंदर हो, जीवन मुक्त उच्यते। तो जो व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं वो नित्य से वो जीवन मुक्त हैं, हालांकि वो इस भौतिक संसार में हो लेकिन फिर वो जीवित रहते हुए भी क्या है, मुक्त जीव है। यही बात द्रौपदी बता रहे हैं कि नित्य सिद्ध जीव भगवान की सेवा को कभी नहीं भूलते। तो ये सची माता के बारे में दो चीजें यहां पे पता लगती हैं, पहली कि वो नित्य सिद्ध भक्त हैं और दूसरी बचपन से ही भगवान विष्णु की वो सेवा करती थी। अब आगे जब हम देखेंगे तो ऐसा लग सकता है कि कोई साधारण माता है, वो साधारण माँ है, मदर है, तो इसीलिए इस तत्व को ये प्रभुपाद जी पहले बता रहे हैं। आगे सची माता के जो भाव प्रकट होंगे उससे पता लगेगा कि हाउ ग्लोरियस शी इज, कितनी वो महान है, सची माता की जो महानता है वो आगे प्रसंग में पता लगेगा। श्रीवासाद तो प्यार 168, श्रीवासादी यत प्रभु विप्र भक्त गण प्रभु के भिक्षा देते हैले सबाकार मन। चूंकि अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा तथा भोजन देते थे, अतएव श्रीवास ठाकुर आदि अन्य भक्त भी उन्हें भिक्षा देना और भोजन करने के लिए निमंत्रित करना चाह रहे थे। तो अद्वैताचार्य उनको जो है रोज प्रसाद खिलाते थे महाप्रभु को, तो बाकी सब भक्त भी चाहते थे श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त भी कि वही भगवान को भिक्षा दें और भोजन दें। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, यह समस्त गृहस्थों का धर्म है कि यदि कोई सन्यासी उनके पड़ोस में या उनके गांव में हो तो वे उसे अपने घर आमंत्रित करें। भारत में आज भी यह प्रथा चालू है, यदि कोई सन्यासी किसी गांव के पड़ोस में रहता है तो सारे गृहस्थ बारी बारी से उसे आमंत्रित करते हैं। जब तक वह सन्यासी गांव में रहता है वह गांव वालों को आध्यात्मिक ज्ञान देता है। दूसरे शब्दों में सन्यासी को दूर दूर तक यात्रा करते हुए भी रहने या खाने की समस्या नहीं सताती। यद्यपि अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दे ही रहे थे फिर भी नवद्वीप तथा शांतिपुर के अन्य भक्त भी उन्हें प्रसाद देने के लिए इच्छुक थे। तो ये एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है यहाँ पे कि किस प्रकार से समाज के अंदर सभी वर्णों और सभी आश्रमों के अंदर एक बहुत बढ़िया सामंजस्य है, अर्थात कॉपरेशन है कि सभी वर्ण सभी आश्रम मिलकर के क्या करें, भगवत धाम जाएं। तो जो भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज इस बारे में बताते हैं कि जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये चार के अंदर एक एक स्पेशलिटी भगवान ने दी है, विशेष है एक एक गुण, और वो गुण वो क्या करते हैं, सारे समाज की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा करते हुए हर एक के पास एक एक विशेष गुण है, ऐसे करके जैसे ब्राह्मण है तो उनके पास विशेष जो कंट्रीब्यूशन समाज के लिए वो क्या है, उनकी ज्ञान, उनका जो ब्रह्म जो तपस्या है, जो ज्ञान है, जो उनका डिटैचमेंट है विशेषकर समाज के प्रति, और भगवान के उनकी आसक्ता में उनकी रुचि या कह सकते हैं शास्त्रों का जो ज्ञान है, तो वो पूरे समाज को ज्ञान बांटते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर विशेष क्या चीज है, उनके अंदर बाहुबल, उनका तेज, क्षत्रिय जो, तो वो क्या करते हैं सारे समाज की रक्षा करते हैं, दे शेयर दैट, उनका जो बल है वो समाज की सेवा में लगाते हैं। वैश्यों के पास क्या है, धन कमाने की कला है, या फिर उनके अंदर वो योग्यता है, गुण है, और वो पूरे समाज की सेवा में लगाते हैं। और शूद्रों में क्या है, सेवा करने की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से कॉपरेशन करते हैं, पूरा वर्णाश्रम इज अ सिस्टम ऑफ कॉपरेशन, इट्स अ वेरी पावरफुल सिस्टम ऑफ कॉपरेशन, कि जिसके पास जो गुण है वो समाज की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार से ऐसे ब्रह्मचारी गृहस्थ मानप्रस्थ सन्यासी भी जो है उनके अंदर ये है। तो जो सन्यासी है उनका कर्तव्य क्या है, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होकर के और सभी बाकी वर्णों को और आश्रमों को यह ज्ञान दे, शिक्षा प्रदान करें कि किस प्रकार भगवान की किस प्रकार वो जो है और अधिक विरक्त होकर भगवान के चरणों के प्रति वास्तविकता में आसक्ति उत्पन्न कर सके। और गृहस्थों का कर्तव्य क्या है कि बाकी तीन आश्रमों का, जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी हैं, इनको इनका भरण पोषण करे वास्तविकता के अंदर। तो ये श्लोक के अंदर देखते हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि सभी गृहस्थों का धर्म है कि वो जो है सन्यासियों को प्रसाद दें इस प्रकार से, और सन्यासी का धर्म क्या है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को प्रदान करें। इसके आगे प्रयास संख्या 169। शूनि शचि सभा के करिल मिनती निमा येरा दर्शन आर मुहि पाव कति। महाप्रभु के भक्तों द्वारा ऐसे प्रस्तावों को सुनकर शची माता ने भक्तों से कहा, तो सभी भक्त महाप्रभु को आमंत्रित कर रहे थे कि हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए, इस प्रकार से। तो जब शची माता ने सुना तो उन्होंने ये बोला, अब मुझे निमाई के दर्शन पाने के कितने अवसर हाथ लगेंगे, क्योंकि अब निमाई ने संन्यास ले लिया, वो घर पे नहीं है, और कोई भी संन्यासी घर पे नहीं आएगा, अपने घर पे नहीं आएगा, किसी और के घर पे जा सकते हैं लेकिन अपने घर पे नहीं आएंगे, तो मुझे कितने अवसर मिलेंगे। तो आगे बता रही हैं, शची माता ने इसलिए निवेदन किया सभी भक्तों से, जहां तक तुम लोगों की बात है, तुम निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु से अन्यत्र भी अनेक बार मिल सकते हो, किंतु मेरे लिए उससे फिर से मिलने की संभावना कहां है, मैं तो घर पे रहूंगी, सन्यासी अपने घर कभी वापस नहीं आता। जय श्री श्री राधा रतिकम भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री राम सुंदर महारण की, जय श्री गौणता की, जय श्री प्रभुपाद की। तो सची माता निवेदन करती हैं कि आगे मुझे तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं, इसलिए यावत आचार्य गृह निमायर अवस्थान मुई भिक्षा दिमु सभा कार्य मांगो दान। तो सची माता ने सही भक्तों से अपने लिए यह दान मांगा, जब तक चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे रहे केवल मैं ही उन्हें भोजन दूं, कि जब तक वो शांति पर मध्य कर रहे हैं तो मुझे ये आप दान दो कि केवल मैं उनके लिए कुकिंग करूं। ऑफकोर्स कभी कभी हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में भी ऐसी होता है कि कभी सन्यासी इस मंदिर में आते हैं तो कई बार दो चार पांच माताओं में झगड़ा हो जाता है कि मैं उनके लिए कुकिंग करूंगी, मैं उनके लिए कुकिंग करूंगी, ऐसे करके तो या उनके लिए कॉम्पिटिशन रहता है, झगड़ा तो नहीं पर एक कॉम्पिटिशन रहता है कि मैं उनके लिए कुकिंग करूंगी इस प्रकार से। और सन्यासी भी क्या कर सकते, उनका डाइट भी थोड़ा कम होता है, नहीं तो पांच घर से भी ले सके वो, सबको संतुष्ट भी नहीं कर सकते इस प्रकार से। तो एक सची माता कह रही है कि नहीं, क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य प्रेम है और वास्तविक यशोदा माता है, और ऑफ कोर्स ये नेचुरल भी है, कोई भी माता होंगी तो अपने पुत्र के लिए प्रसाद बनाना ही चाहेंगे, तो वो ये कह रही है कि केवल मैं ही उन्हें भोजन दूं। और सची माता की यह अपील सुनकर सारे भक्तों ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, हम सभी लोग सची माता की इच्छाओं से सहमत हैं। तो निश्चित रूप से कोई भक्त ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं वहां पे। माता रव्यग्रता देखी प्रभुर व्यग्र मन, भक्त गण एकत्र करी बलीला वचन। लेकिन सची माता जो है व्याकुल थी, तो महाप्रभु विचलित हुए, तो वो बता रहे हैं इस प्रकार से, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की परम उत्सुकता देखी तो वे कुछ विचलित हुए, अतएव उन्होंने वहां उपस्थित सारे भक्तों को एकत्र किया और उनसे बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों को बतलाया, मैं तुम लोगों की आज्ञा लिए बिना वृंदावन जाना चाह रहा था, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हुई और मुझे लौटना पड़ा। अफकोर्स उस बाधा का नाम नहीं बताया उन्होंने लेकिन महाप्रभु कह रहे कुछ बाधा उत्पन्न, मुझे वापिस आना पड़ा। फिर महाप्रभु कह रहे हैं, यद्यपि सहस आमी करी याची संन्यास तथापि तोमा सब हैते नहीं ब उदास। तो ये अनुवाद में ऐसा वर्ड लिखा है दोस्तों, पर मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, शुड बी महाप्रभु यूज करते हैं फ्रेंड्स, पर मित्रों वर्ड ज्यादा उचित होता है यहाँ पे। यद्यपि मैंने अचानक ही यह संन्यास ग्रहण कर लिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि तब भी मैं आप लोगों से कभी उदासीन नहीं हो सकूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम लोगों को नहीं, आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं अपनी माता को छोड़ पाऊंगा। तो महाप्रभु, दिस इज अनदर प्रिंसिपल इन चैतन्य चरितामृत, एक सन्यासी को, सन्यासी इज अ सिविल डेड मैन, देखा जाए किसे सन्यास ले लिया तो सामाजिक दृष्टि जो मृत व्यक्ति है, उसका अपने परिजन से समाज से कोई ऐसा खास रिलेशनशिप है नहीं, हालांकि ये इंजेक्शन है कि वो अपनी माता से मिल सकते हैं, अपने पुत्र से मिल सकते हैं, केवल अपनी विवाहिता स्त्री से नहीं मिल सकते, ऐसा शास्त्रों में इंजेक्शन है, बट जनरली इज अ सिविल डेड मैन, कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन महाप्रभु की डीलिंग से हम देखते हैं, इवन जगन्नाथपुरी में भी देखेंगे कभी कभी वो नियम तोड़ेंगे कुछ कुछ सन्यास के, अपने भक्तों के प्रेम के आवेश में आकर, यहां पर भी महाप्रभु उनको ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हालांकि मैंने सन्यास ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे दूर हो गया हूं, मैं कैसे भूल सकता हूं आप लोगों को, जो आपका प्रेम है मैं नहीं भूल सकता। तो महाप्रभु अश्योरिंग देम कि उनका हृदय जो है वो विदीर्ण ना हो, सो इज वेरी सेंसिटिव टू देयर फीलिंग्स, उनके फीलिंग्स के प्रति, उनके भावनाओं के प्रति महाप्रभु बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, और कह रहे हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा आप लोगों को नहीं छोड़ पाऊंगा और नहीं मैं अपनी माता को छोड़ पाऊंगा, महाप्रभु ऐसा कहते हैं उन्हें आश्वासन देने के लिए। तो ये रिलेशनशिप ऑफ प्योर लव है, जो विशुद्ध प्रेम है, इट इज बियॉन्ड सोशल कस्टम, ऐसा करके कि समाज के नियमों से वो ऊपर है। लेकिन इसके आगे महाप्रभु फिर भी कि किस प्रकार जो सामाजिक रीति है, सोशल एटिकेट है, ये भी महत्वपूर्ण है। जिसका किसी भी व्यक्ति को केवल आपातकालीन स्थिति के अलावा उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो महाप्रभु आगे उस स्थिति को जो है वो भी स्तंभित क्या बोलते हैं स्थापना करते हैं। सन्यासीर धर्म नहे सन्यास करिया निज जन्म स्थाने रहे कुटुंब लइया। सन्यास स्वीकार करने के बाद सन्यासी का यह धर्म नहीं होता कि वह अपने जन्म स्थान पे अपने कुटुंबियों से घिरा रहे। यह सन्यासी इज फॉरबिडन टू स्ट्रेन द एसोसिएशन ऑफ हिज ओन रिलेटिव्स, कि सन्यासी अपने कुटुंबियों से नहीं घिरा रहे हैं। अतः कुछ ऐसा प्रबंध करो जिससे मैं तुम लोगों को न छोड़ूं और लोग मुझ पर सन्यास लेने के बाद संबंधियों के साथ रहने का लांछन भी न लगा सके। तो मैं आपको ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि मैं आपके साथ भी रहूं और लोग जो है निंदा भी ना करें। तो महाप्रभु के वचन सुनकर अद्वैताचार्य आदि सारे भक्त छची माता के पास गए, क्योंकि देयर इज अ टेंडेंसी अगर महापुरुष सन्यासी हैं और वो छची माता के हाथ का प्रसाद बहुत दिन तक खाएंगे तो निश्चित रूप संसार बोले जो समाज के लोग हैं वो निश्चित रूप से उनकी निंदा करेंगे कि देखिए किस प्रकार के सन्यासी हैं ये जो अपनी माता से इतने आसक्त हैं, अपने घर से इतने आसक्त हैं, ठीक है, और सन्यास धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो यहां पे महाप्रभु के वचन सुनकर अद्वैत सभी भक्त छची माता के पास गए सबसे पहले। बाकी भक्तों को इतना कोई बात नहीं, चलो, लेकिन छची माता के क्या क्या उनका रिएक्शन होगा इसके लिए सब भक्त छची माता के पास जाते हैं। और जब उन्होंने छची माता के वचनों जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों का निवेदन किया तो अखिल विश्व की माता या जगन माता छची कहने लगी। और वो आज का प्यार है तो भक्त दोहरा सकते हैं पीछे, ऐसे बहुत लंबा तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने दिया है, मतलब चैतन्य चैतन्य तात्पर्य बहुत कम मिलते हैं, दो पेज का लगभग तात्पर्य है प्रभुपाद जी का इसके अंदर। तो तेहो यदि इहा रहे तबे मोर सुखा तार निंदा हय यदि से मोर दुखा तेहो यदि इहा रहे तबे मोर सुखा तार निंदा हय यदि से मोर दुखा तेहो यदि इहा रहे तबे मोर सुखा तार निंदा हय यदि से मोर दुखा। तेह यदि इहा रहे तबे मोर सुखा तेह यदि इहा रहे तबे मोर सुखा तान मोर यदि से मोर दुखा। माताजी तात्पर्य अनुवाद अध्ययन तात्पर्य इस डिवाइन गए ऐसी भक्ति राम स्वामी शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद की। शची माता ने कहा यह मेरे लिए परम सुख की बात होगी यदि निमाई अर्थात श्री चैतन्य यहां रहते हैं। महाप्रभु संन्यास का नाम था श्री कृष्ण चैतन्य। यह मेरे लिए परम सुख की बात होगी यदि निमाई यहां रहते हैं, किंतु यदि कोई उस पर लांछन लगाए तो यह मेरे लिए परम दुख की बात होगी। तात्पर्य माता के लिए यह परम सुख की बात होती है यदि उसका बेटा कृष्ण की खोज में गृह त्याग किए बिना उसके साथ रहता जाए। ध्यान तो सुनने का तात्पर्य बहुत विचित्र है। साथ ही यदि बेटा, ऑफकोर्स का हिंदू अनुवाद आई यूज दिस वर्ड बेटे की जगह पुत्र, यदि पुत्र कृष्ण की खोज न करके घर पर रहा आता है तो अनुभवी संत पुरुष उसकी निंदा करते हैं। ऐसी निंदा माता के लिए अति दुखद होती है। यदि असली माता चाहती हैं कि उनका पुत्र अध्यात्म में उन्नति करे तो श्रेयस्कर यही होगा कि वह उसे कृष्ण की खोज करने की अनुमति प्रदान कर दें। माता स्वभावतः अपने पुत्र का कल्याण चाहती हैं। अब प्रभुपाद एक बहुत बहुत हैवी लाइन तात्पर्य में लिख रहे हैं। यदि माता अपने पुत्र को कृष्ण की खोज करने की अनुमति नहीं देती तो वह मां कहलाती है, मां अर्थात जिसका अर्थ होता है माया। यदि कोई माता अपने पुत्र को कृष्ण की खोज नहीं कराने देती तो वह माया होती है। शची माता अपने बेटे को सन्यासी बनने तथा कृष्ण की खोज करने की अनुमति देकर विश्व भर की माताओं को शिक्षा देती हैं। वे इंगित करती हैं कि सारे पुत्रों को कृष्ण का असली भक्त बनना चाहिए और इन्हें उन्हें अपनी वात्सल्यमयी माता के पास घर पर ही नहीं बने रहना चाहिए। इट्स वेरी हैवी लाइन कि सारे पुत्रों को कृष्ण का असली भक्त बनना चाहिए और उन्हें अपनी वात्सल्यमयी माता के पास घर पर नहीं बने रहना चाहिए। इसकी पुष्टि भागवतम में पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय 18वें श्लोक में होती है। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्या जननी न सस्यात, दैवम न तस्यात न पतिश्च सस्यान, न मोचयेत यदः समुपैत मृत्युम। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आसन्न मृत्यु के मार्ग से बचने में सहायक नहीं बन सकता, उसे न तो गुरु बनना चाहिए, न परिजन, न पिता, न माता, न पूजनीय अर्चा विग्रह और न पति। प्रत्येक जीव कर्म नियम के अधीन होकर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण करता रहता है। इसलिए सारी वैदिक विधि भ्रमणशील जीव को माया अर्थात जन्म मृत्यु रोग जो बुढ़ापा के चंगुल से बचाने के निमित्त होती है। इसका अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकना। यह चक्र तभी रुक सकता है जब कोई कृष्ण को पूजता है, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को जानता है, हे अर्जुन, वह अपना शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु का चक्र रोकने के लिए कृष्ण को यथारूप जानना चाहिए। कृष्ण को जान लेने से ही इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म को रोका जा सकता है। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से भगवान के पास वापस जाया जा सकता है। माता पिता गुरु पति या अन्य परिजन के लिए जीवन की चरम स्थिति यही है कि वे अन्यों को भगवत धाम जाने में सहायक हों। परिजनों के लाभ के लिए यह सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य है। इसीलिए शची माता ने निमाई पंडित अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की माता होते हुए भी इन सारे तथ्यों पर विचार करके अपने पुत्र को कृष्ण की खोज में बाहर जाने की अनुमति देने का निश्चय किया। उसी के साथ ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलापों की खबर मिलती रहे। श्री प्रभुपाद की, श्री शची माता की, श्री गौरांग महाप्रभु की। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा पर तात्पर्य है कि किस प्रकार जो है सभी आदर्श माताओं को जो है व्यवहार करना चाहिए और आदर्श पुत्रों का व्यवहार करना चाहिए। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु शची माता दोनों बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ पे माता का धर्म बताया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने विशेष अपने संतानों को, आपको चाहे पुत्र यूज किया है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उन सबको भगवत धाम जाने में प्रशिक्षित करना चाहिए। भगवत धाम जाने के मार्ग के अंदर आजकल का समय तो बहुत ही विपरीत है। वो आजकल की माताएं तो पुत्रों संतानों को जन्म ही नहीं लेने देती, वो जो है उनको गर्भ के अंदर ही उनकी हत्या कर देती हैं। तो ये वास्तविकता माता नहीं है और माया भी नहीं है, ये तो है कि नहीं, ये तो ना माता है ना माया है। इस प्रकार की माताएं तो ये तो अपने जो है गर्भ को उन्होंने एक कसाई घर बना के रखा हुआ है। इस वजह से सच्ची बात है, ये फैक्ट है। और या इस प्रकार से है ना, और इस प्रकार से जो है ना उनको कभी शांति और आनंद प्राप्त होने वाला है और ना इस समाज में कभी शांति होने वाली है। लेकिन इसीलिए जो है आजकल नहीं, प्रभुपाद जी के समय में भी और कई हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ लीडर बताते हैं कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में जो भक्त हैं वो आने वाली भावी इस्कॉन संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि वहीं से आगे जाके सही भक्त अच्छे गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और अच्छे ब्रह्मचारी निकलेंगे। यदि जो भक्त गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं वो अपने संतानों को इस पर शिक्षा प्रदान करते हैं और ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वे खुद कृष्ण भावना भावित बनेंगे और अपने संतानों को कृष्ण भावना बनाएंगे, क्योंकि जो माता पिता हैं वही सबसे पहले गुरु हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि माता बच्चे जो सीखते हैं अपने माता पिता सबसे पहले सीखते हैं, उसके बाद बाहर को सीखते हैं। तो माता पिता को बहुत ही आदर्श चरित्र वाला होना पड़ेगा। वास्तविकता में कृष्ण भावना भावित अगर वो होंगे तो निश्चित रूप से संतान कृष्ण भावना भावित होगी ही होगी। और आज हम देखते हैं इस्कॉन के अंदर कितने सन्यासी हैं, गिनती के हार्डली 200-250 सन्यासी होंगे मुश्किल से, टोटल 90, सिर्फ 90 सन्यासी है पूरे इस्कॉन के अंदर, इतनी बड़ी संस्था के अंदर। और गिनेंगे तो कितने ब्रह्मचारी हो जाएंगे, कोई 2,500-3,000, 5,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा 5,000-10,000 से ज्यादा ब्रह्मचारी नहीं होंगे। कितने वानप्रस्थ होंगे, गिनती के 100, 200, 400, 500, 1,000। हमारे मंदिर में एक को कह रहे हैं हर्षित के तो ऐसे अगर गिना जाए तो, और मान लीजिए कुछ भक्त जो अभी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है लेकिन आगे जाने वाले या ब्रह्मचारी आश्रम में गृहस्थ आश्रम होंगे, उनकी तादाद कितनी होगी, बहुत कम। अगर देखा जाए तो अधिकांश भक्त गृहस्थ आश्रम के अंदर है, गिन सकते कितनी, मतलब 99% लगभग इस प्रकार से गिना जाए तो 98-99% भक्त गृहस्थ आश्रम के अंदर होंगे। तो इस हिसाब से गिना जाए तो कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है गृहस्थ भक्तों की। और श्रील प्रभुपाद इसका एक उदाहरण आपको देते हैं, हिजोनस भक्तिव्रत भागवत महाराज आए थे तब वो बता रहे थे उपदेशामृत के श्लोक संख्या 4 के अंदर, ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि हर भक्त रूप गोस्वामी गृहस्थ भक्तों को विशेषकर रूप गोस्वामी का आदर्श चरित्र का आदर्श का पालन करना चाहिए कि अपनी आय का 50% जो है कृष्ण भावना मृत के लिए देना चाहिए उनको। अगर मान लीजिए जितने हमारे गृहस्थ भक्त हैं इस कांग्रेस जितना बड़ा कांग्रेगेशन है सभी भक्त अपनी आय का 50% इनकम इस्कॉन संस्था को देते हैं इस कृष्ण प्रचार के अंदर, तो इस्कॉन में कोई लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम, कोई फंड कलेक्शन स्कीम्स की आवश्यकता ही नहीं है। हम हर साल में एक रोहिणी जैसा मंदिर बना सकते हैं। हाँ नहीं, आप सोचिए, देयरफॉर डेडिकेशन इन गृहस्थ आश्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो गृहस्थ भक्त उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उससे हमें लगे कि जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो इस काम में किन किन भक्तों के समय जो है और हमेशा ही रहेगी आने वाले समय के अंदर भी। केवल जो इस काम के शुरुआती 10-15 साल थे उसी के अंदर ऐसा नियम था प्रभुपाद जी के समय में कि सही भक्त इस काम संस्था में पहले मंदिर में रहा करते थे, और प्रभुपाद के अंतिम समय तक कई भक्त ऐसे होने लगे जिनको प्रभुपाद ने अनुमति दी कि वो बाहर जाके रहे। तो इससे एक चीज हमें मिलती है कि किस प्रकार सही माताओं और पिताओं को जो माता पिता हैं उन लोग किस प्रकार से अपने संतानों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और चैतन्य चरितामृत बहुत ही व्यवहारिक जो है ग्रंथ है। अब हम सोचे मान लीजिए कि 90 सन्यासियों को इस्कॉन के सारी कांग्रेस अपने घर में बुलाना चाहें तो वो सन्यासी तो कुछ भी नहीं कर सकते है कि नहीं, असंभव है उनके लिए आगे प्रचार कार्य करना। तो हो सकता है हम इस चीज को कॉपी करें और ये बहुत अव्यवहारिक चीज है आज के जमाने के अंदर, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि किस प्रकार जो गृहस्थ आश्रम भक्त हैं या सभी माताएं हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपने पुत्रों को शिक्षा दें कि गृहस्थ आश्रम में जाने का जो कर्तव्य जो धर्म है वो यही है कि किस प्रकार विशेषकर जो क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी आसक्ति किसके प्रति होती है, उनके संतान के प्रति सबसे विशेषकर अपने माता पिता की जो होती है और उनको कृष्ण भावना भावित बना करके उनको भगवान चरण में ऑफर किया जाए, दैट इज द परफेक्शन ऑफ गृहस्थ आश्रम। और ये देखिए केवल भक्ति योग के अंदर गृहस्थ आश्रम की छूट है, ये सबसे बड़ी विशेष बात है कि बाकी किसी भी आप कर्म चाहे कर्म योग ज्ञान योग हो चाहे वो अष्टांग योग हो और शंकराचार्य के स्कूल में अर्थात मायावाद के स्कूल में अगर आपको जाना हो तो उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए पहली क्वालिफिकेशन है संन्यास लेना पड़ेगा आपको, पहला क्वालिफिकेशन है। ये केवल भक्ति योग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आचार्यों की कृपा से युक्त वैराग्य की विधि से हम चाहे एक प्रकार से देखा जाए तो यौन जीवन बहुत घृणित हो सकता है एक प्रकार से भौतिक दृष्टि में देखा जाए, लेकिन ये हमारे आचार्यों की और भगवान की विशेष कृपा है कि भक्ति के मार्ग से इस प्रकार की विधि को भगवान के सेवा में पूर्णतया लगाया जा सकता है ना, कि उसका जो फल है अपने संतान जो है उनको भगवान के प्रति प्रसिद्ध करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमने ये तो सुना है कि अगर पुत्र अपने माता पिता को उतारता नहीं है तो किसके समान है, मूत्र के समान है, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना और पढ़ा है कि यदि माता अपने पिता को पुत्रों को संतानों को जो है भगवत भक्ति शिक्षा नहीं देती तो वो माँ नहीं है क्या, माँ है माता नहीं है क्या है, माया है। आप सोचिए बहुत विशेष बात है यहाँ पे, लेकिन सच्ची माता यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। और इसके साथ साथ दूसरे जो कर्तव्य सही पुत्रों का, वो क्या कर्तव्य है कि अपनी वात्सल्यमयी माता, हाँ रीड एग्जैक्ट लाइन, वे इंगित करती हैं कि सारे बेटों को कृष्ण का असली भक्त बनना चाहिए और उन्हें अपनी वात्सल्यमयी माता के पास घर पर नहीं बने रहना चाहिए। तो वन इज अलाउड टू बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड। इसे पता लगता है कि हम अपने माता पिता के प्रति बहुत स्नेह जरूर प्रदान कर सकते हैं और उनके प्रति वी शुड हैव डीप ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने हमें शरीर दिया, हमें हमारा पालन पोषण किया और हमें शिक्षा प्रदान करी। तो किसी पुत्र को जो है अपने माता पिता के प्रति आभार होना चाहिए, बहुत ही आभार प्रकट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल वो भौतिक रूप से उनकी सेवा करते रहे। यहां प्रभात लिख रहे हैं कि परिजनों के लाभ के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य यह है कि उनके भगवतधाम जाने में उनके सहायक हों। तो इसके लिए एक्सटर्नल रूप से हमें कुछ कठोर होना भी पड़े तो होना चाहिए एक भक्त को। ये नहीं कि अपने माता पिता के, विशेषकर क्योंकि माता बहुत स्नेहशील होती हैं, तो ये नहीं कि उनके हाथ का प्रसाद या सारे कंफर्ट जोन के लिए वो अपने घर पे ही बना रहे। तो हर पुत्रों का कर्तव्य है कि वो वास्तविक भक्त बने, कृष्ण के भक्त बने, वो फल्गु वैरागी ना बने या फिर ये कृष्ण भावना वृद्ध जो प्रोसेस मिला है इसको चीपली ना लें, ऐसे करके बिल्कुल भी कि उन्होंने कि माता पिता को कितना कष्ट पहुंचता है एक प्रकार से जब कोई भी पुत्र इस प्रकार से त्यागता है, चाहे वो फॉल्स अटैचमेंट के कारण हो, लेकिन उनको कष्ट तो पहुंचता ही है। तो उनका कर्तव्य यह है कि उस कष्ट के बदले वास्तविक कृष्ण भावना भावित बने। ऐसा ना हो कि वो कोई सस्ता मार्ग अपना के और भगवान के मार्ग भगवत भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाएं या भगवत भक्ति के नाम पर असली धर्म को छोड़कर किसी कविता धर्म या सस्ते धर्म को अपना लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भगवत भक्ति का मार्ग निश्चित रूप से सरल है लेकिन आसान नहीं है और हर व्यक्ति को चाहिए कि तपस्या का मार्ग को अनुकूल करे इस प्रकार से। और हम देखते हैं शास्त्रों के अंदर से बहुत से उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज की जो माता थी उन्होंने भी अपने पुत्र को ध्रुव को की क्या शिक्षा दी कि आप भगवान की शरण ग्रहण करो। और भगवान को ग्रहण करने का जो भगवान की शरण ग्रहण करने का जो मार्ग है इतना आसान नहीं है। ध्रुव महाराज जंगल गए और तपस्या जो है तपस्या के मार्ग अनुकूल किया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि नारद मुनि की जो माता थी उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को साधुओं की सेवा में लगाया। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे इस्कॉन संस्था में भी कई बार ऐसा कई बार नहीं बहुत बार ही होता है कि कई माता पिता अपने संतानों को रोकते हैं कि आप जाके सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का संग मत करो, साधुओं का संग मत करो। क्यों? क्योंकि तुम भी उनके मार्ग पे चले जाओगे। ये बहुत ही एक प्रकार से बोल सकते हैं माता पिता का धर्म नहीं है, ये हिंसा है उनके अपने संतानों के प्रति। उनको बोलना चाहिए कि नहीं आप जाके साधु संतों की सेवा करो। बोले हम तो भक्ति करते हैं हमारे बच्चे ना करें, कोई बात नहीं। तो ये इस्कॉन में भी हम कई बार देखने को हमें मिलते, कई बार नहीं बहुत बार देखने को मिलता है इस प्रकार से, देखो क्या परिणाम मिला ऐसे करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही हम देखते हैं तृतीय स्कंद के अंदर भागवतम के अंदर बहुत सारे अध्याय जो है दिए गए हैं देवहूति माता के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, किस प्रकार एक आदर्श पत्नी है वो, आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी और एक आदर्श माता है। कि जब वो देखती है कि कपिल देव उनके संतान है, भगवान खुद उनके संतान के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो माता ये नहीं कहती कि उनसे प्रेम नहीं करती, वो क्या करती है उनसे प्रश्न पूछती है कि किस प्रकार से मैं जो संसार से आसक्ति से छूट सकते हूं। तो जिन भक्तों ने कदम उठाया है ऑलरेडी, जिन्होंने अपने कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हुए हैं और अपने घर के कंफर्ट त्यागा है, उनको भगवत भक्ति में हर प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, एंड स्टिल बी अफेक्शनेट टू देयर मदर्स एंड फादर्स। ऐसे करके अपने माता पिता को स्नेहशील रहना चाहिए लेकिन फिर भी आसक्त नहीं रहना चाहिए। और इसका एक जस्ट इसी प्रिंसिपल का कि महाप्रभु ने कहा कि मैं यहां रहना भी ठीक नहीं है अपने परिजनों से घिर के रहकर, क्योंकि निश्चित रूप से आसक्ति बनती है इस प्रकार से। कोई भी अपने परिवार वालों के साथ में रहेगा, आसपास में रहेगा, तो निश्चित रूप से आसक्ति होगी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसा बोला गया। तो हमें याद है कि एक भक्त जो है वो एक मंदिर ज्वाइन करने वाले थे, तो उनको हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि आप यहां पे ज्वाइन करो ऐसे करके मंदिर। तो आप कहीं ज्वाइन, उन्होंने पूछा महाराज कौन सा मंदिर ज्वाइन करना चाहिए, तो उन्होंने बोला ये वाला मंदिर आप ज्वाइन कर लो। उन्होंने बोला ऐसा कि आप कुछ ज्वाइन कर सकते हो, तो उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि मैं ये मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूँ फलाना। तो महाराज ने कहा ठीक है, और फिर कुछ समय बाद बोलते हैं कि आपका ना घर बहुत पास में है यहाँ पे। तो ऐसा दो भक्त है कैसे हमने देखा है पहले, एक अगर दिल्ली में था तो उन्हें बोला आप दूसरी सिटी में ज्वाइन करो, उसका घर उस दूसरे घर दूसरी सिटी में था, उसी सिटी में था उसको बोला इस सिटी में आओ आप, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि महाराज ने देखा कि वो भक्त माता पिता जब आएंगे तो हो सकता है वो भक्त आसक्त हो। तो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि इसीलिए भक्त को सतर्क रहना चाहिए इस प्रकार से कि इस आसक्ति के प्रति, नहीं तो माया बहुत ही प्रबल है। जिस प्रकार भरत महाराज जब अकेले थे तो भाव के स्तर पर आते वो एक हिरण से आसक्त हो गए, तो किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार से आसक्त होना बहुत स्वाभाविक है। और आजकल तो और भी ज्यादा, चाहे दूर भी हो तो फेसबुक, ईमेल्स, मोबाइल फोन, एसएमएस, इसके थ्रू हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। जो भी जो है वैराग्य के जीवन का अनुकूल करने का प्रयास कर रहे हैं या महाप्रभु के मिशन में जो है रहना चाहते हैं, तो इस आसक्ति से बचे नहीं। देखिए, माता पिता से बचना नहीं है, माता पिता के प्रति आसक्ति से बचना है। इस प्रकार से लेकिन उनके प्रति कर्तव्यशील होना ठीक है, लेकिन आसक्त होना किसी भी रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और क्या बोलते हैं भावुक रूप से, किसी प्रकार से होना ठीक नहीं है। तो व्यक्ति को जो है इन शास्त्रों की इन शिक्षाओं को ग्रहण करके पालन करना चाहिए कि वो कर्तव्यशील पुत्र हो, जिम्मेदार पुत्र हो, लेकिन आसक्त ना हो। और सही माताओं को चाहिए कि वो वास्तविक माता बने, माया ना बने। ग्रंथराज चैतन्य चरिता अमृत की तो किन्हीं भक्तों के प्रश्न व टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं, 5 मिनट है।
विषय था, चर्चा का विषय था, आता है मुझे कई बार ये विषय थोड़ा पेचीदा बन जाता है। ये इस तरीके से तब आसान है कि जब मान लीजिए कि अगर मतलब परिवार के जो दूसरे सदस्य है वो भक्त ना हो, पर जब परिवार के सारे सदस्य भक्त हैं और एक परिवार का एक सदस्य जो अपने आपको समर्पित करना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में जैसे यहाँ पे भी अगर देखे तो सचिव माता भी भक्त है,
बचपन से भक्त
वहाँ जगत माता है जैसे, तो फिर कैसे, हाउ टू डील विथ इट, बिकॉज आर्गुमेंट कम्स की यू नो लाइक, सो यू हैव टू ऑलवेज स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सर्विंग डिवोटीज, सो द वो सेम माहौल जो है वो आपको घर पे ही मिल रहा है और सेम काम आप जो है घर से बाहर जाके भी करेंगे, हाउ टू टैकल दैट लाइक।
प्रोजेक्ट व्यवहारिक स्थिति दे रहे हैं जो आजकल है ही है बहुत सारे समाज के अंदर, कि जिनके माता पिता भक्तों, समाज के जो है और उनके परिवार के सारे सदस्य भी भक्तों हों, तो उन्हें घर त्यागने की आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वही भक्ति का माहौल तो उन्हें वहां मिल ही रहा है। निश्चित रूप से अगर वहां आया कि भक्ति कर सकते हैं तो ऐसे क्या बोलते हैं परिवार में कोई बुराई नहीं है इस प्रकार से, इट इज अ डिवोटी फैमिली, और वास्तविकता में उनका लक्ष्य हो कि गुरु को पसंद करना है, सही परिवार जन मिलकर कर रहे हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल ऐसा होगा ही होगा। हर व्यक्ति इस प्रकार से अपना घर छोड़ के नहीं आ सकते इस प्रकार से, लेकिन ये बताया विशेषकर कि जिनके अगर कोई समर्पित होना चाहता है और बिना किसी बाधा के, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी रुकावट के अपने गुरु और कृष्ण शिला प्रभा की सेवा करना चाहता है, तो सही परिवार वालों को उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हें जाने देना चाहिए, जैसे तब नहीं रोकना चाहिए उन्हें किसी प्रकार से कि आप रुको, और ना उन्हें बाद में प्रलोभित करना चाहिए, कोई बात नहीं जब दिक्कत होगी तो वापस आ जाना, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके। इट्स नॉट अश्योर दैट, फॉल्स अश्योरेंस ऑल्सो, कोई बात नहीं घर पास में है बेटा, परेशानी हो तो आ जाना कभी, हम कुछ को दे देते हैं, दैट शुड नॉट हैपन इस प्रकार से। दैट मच उतना तो उनको भी फिर कठोर होना चाहिए, कठोर नहीं इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि ऐसा हो गए, कम से कम ये अच्छा है कि वो परिवार के सदस्य जो भगवान के सामने जीवन समर्पित कर रहे हैं, अगर बाद में वो किसी बुरी आदत को या किसी और स्त्री को समर्पित करेंगे तो देखने भी नहीं आएंगे इस प्रकार से। ये सीधा देखा है, ऐसा हर परिवार में हमने देखा है। प्रभुपाद जी के समय से ही है वो, जब लोकनाथ स्वामी महाराज थे तो उनके साथ आरावाड़े जो उनका गांव था वहां पर इतना उनको समस्या, कमरे बंद कर देते, उनकी किताब छीन लेते थे, वो अपनी केमिस्ट्री के रेफरेंस बुक के अंदर प्रभुपाद छोटी बुक पढ़ा करते थे ऐसे करके, और उस समय तो प्राचीन काल से रघुनाथ दास गोस्वामी जब भागना चाहते थे उनको भी बंद कर देते थे, उनको भी जो है और शादी करा दिया उनका, इस प्रकार से सबसे बड़ा प्रलोभन होता था। नरोत्तम दास ठाकुर उस प्रकार से, और महाराज के समय के तो एक एंटरटेनमेंट होता था उस समय, आजकल टीवी इंटरनेट सब कुछ है, तो उस समय उनके भी परिवार स्वतंत्र शादी कराए थे उनके, लेकिन एक एंटरटेनमेंट रेडियो, उस समय उनका रेडियो हुआ करता था, तो बोले महाराज को रेडियो सुनाते थे इस प्रकार से। और महाराज इतने अधिक वस्तु ईगर, तो जो भी उसमें गाना चलाते थे वो तो महाराज कृष्ण रिलेट करते थे। तो महाराज ये बताते हो एक गाना उस समय आता था, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज ऐसे गाना होता था। तो महाराज अभी प्रवचन के अंदर बताते हैं, बोले तो मेरे को और इंस्पिरेशन मिलता था कि बार बार देखने की तो एक ही चीज है, वो है भगवान कृष्ण। तो फिर प्रभुपाद गए और अभी देखिए आरावाड़े पूरा विलेज जो है भक्त बना हुआ है, और वहां गोपाल जी इतना सुंदर मंदिर महाराज ने बनाया ऐसे करके, और कितने गांव वासियों को महाराज ने दीक्षा दिया इस प्रकार से। जयप्रताप स्वामी महाराज ने अपनी माता को दीक्षा दिया ऐसे करके, तो इसी की ये ऐसा प्रैक्टिकल, हमारे भी कई भक्तों का ये प्रैक्टिकल उदाहरण ही है इस प्रकार से। तो ये महाप्रभु का मिशन जो है बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत जीवंत है, ऐसा नहीं कि 500 साल पहले हुआ था, अभी हो रहा है इस प्रकार से। अंतर्राष्ट्रीय चैतन्य चरणामृत की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।